तफसीर, सूरत अर-रूम मक्की सूरत है, इसके 6 रुकू 60 आयात हैं। अल्फाज और कलिमात की तादाद 827, 827, जबकि हुरूफ 3547 हैं, 3547। इसका नाम सूरत अर-रूम की आयत नंबर 2 से लिया गया है, गुलिबत अर-रूम। ये इसका अलामती नाम है। अर-रूम एक मुल्क का नाम भी है और एक कौम को भी कहा जाता है। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुकत्तआत हैं जिनके मानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बेहतर जानते हैं, अक्सर सूरतों के आगाज में आते हैं। आयत नंबर 2, गुलिबत अर-रूम, गुलिबत मगलूब हो गए, गैन लाम बा इसका रूट है, मादा गलबा। गलबा जो होता है इसके मानी होता है गालिबाना, जैसे बाला दस्ती किसी को मिल जाए। तो यहां पे कहा जा रहा है कि गुलिबत, गुलिबत के मानी है मगलूब हो गए, कि कोई जो है गालिब आ गया है। किन पर? अर-रूम, रूमियों पर। तो गुलिबत मगलूब हो गए हैं, शिकस्त खाई है अर-रूम, रूमियों ने। अब ये नहीं पता चल रहा कि रूमियों ने जो है वो किससे शिकस्त खाई, किसने जो है वो फतह हासिल की। आप देखें तो इस आयत से जो है वो इस बात का पता नहीं चल रहा। और जिन्होंने फतह हासिल की वो है मजूसी, ईरानी कौम। फी अदनल अर्दी, करीब की जमीन में। अदना नजदीक के लिए इस्तेमाल होता है। दाल नून वो इसका रूट है, दुनिया ही से है, दुनिया का रूट। दाल नून वो भी है, दाल नून या भी है। जब दाल नून या आता है तो जिल्लत के मानी में, जलील हकीर। जब दाल नून वो आता है तो करीब नजदीक, और दुनिया आखरत के मुकाबले में करीब है। और अदना से मुराद करीबी इलाका है, अल अर्द जमीन, तो करीबी सरजमीन में मुराद है शाम और फिलिस्तीन का इलाका। तो यहां पे अदनल अर्थ से शाम और फिलिस्तीन की सरजमीन मुराद है, और ये अरब की सरजमीन से बिल्कुल मुत्तसिल थी, साथ थी। फरमाया रूमी करीब की सरजमीन में मगलूब हो गए, इन्होंने शिकस्त खा ली। वहुम मिम्बादे गलबहिम, और हम वो जो रूमी हैं, मिम्बादे गलबहिम मगलूब होने के बाद, शिकस्त खाने के बाद, हारने के बाद, सयगलिबून अनकरीब गालिब आ जाएंगे, अनकरीब इन्हें फतह मिल जाएगी। आयत नंबर 1 से लेकर 7 तक रूमी कौम और ईरानी जो है इनके वाकये की तरफ इशारा है। ज़हूरे इस्लाम के वक्त दुनिया में दो बड़ी सल्तनतें थी, दो बड़ी सुपर ताकतें थी। एक रूमी सल्तनत जिसमें ईसाई रहते थे, मसीही थी वो रूमी सल्तनत। दूसरे ईरानी जो के मजूसी थे, आग की पूजा करने वाले। तो उस वक्त दो सुपर ताकतें थी, दोनों में हमेशा कश्मकश जारी रहती थी, रकाबत थी, लड़ाई करते रहते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद 603 ईस्वी का वाकया है के बाद कमजोरियों से फायदा उठाकर ईरान ने, जहां पे आग परस्त लोग रहते थे, मजूसी थे, उन्होंने रूमी सल्तनत पर हमला कर दिया। और रूम में रहने वाले ईसाई थे, अहले किताब में से थे। अब रूमियों को शिकस्त पर शिकस्त हुई, यहां तक कि 616 ईस्वी तक यरूशलम समेत बैतल मकदस का जो इलाका है उसके समेत रूम की मशरकी सल्तनत का बड़ा हिस्सा ईरानियों के कब्जे में चला गया। अब आप देखें कि ये कौन से जमाने की बात है, 603 ईस्वी का ये वाक्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत 610 ईस्वी में मिली है, और आपने मक्का में जब दावत तौहीद का काम शुरू किया तो ये वही जमाना था कि जब मक्का में आपने जब दावत दी तौहीद की, तो तौहीद और शिर्क की कशमकश शुरू हो गई। मक्का में रहने वाले कौन थे? मुशरिक थे, शिर्क करते थे, और मक्का के करीब ही इलाका था ईरान का, और ईरान में रहने वाले कौन थे? वो भी मुशरिक थे। तो अब एक तरफ मक्का में कशमकश है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और मुशरिकीन के दरमियान, दूसरी तरफ जो दो बड़ी सुपर ताकतें हैं उस वक्त दुनिया की, तो जो ईरानी थे मुशरिक, वो मुशरिक थे, शिर्क करने वाले थे, और उन्होंने अहले किताब को, जो ईमान लाने वाले थे, जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, तो ईरानियों ने अहले किताब को शिकस्त दी थी। तो जब ये वाकया पेश आया तो मक्का के मुशरिकीन ने ये बात कही कि जिस तरह ईरानियों ने रूमियों को शिकस्त दी है, ईरानी मुशरिक हैं, रूमी अल्लाह को मानते हैं, अहले किताब में से हैं, तो अगर आग परस्त लोग, मुशरिक लोग ईसाइयों को शिकस्त दे सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ए मुसलमानों, हम तुम्हारा भी खात्मा कर देंगे, नऊज़ु बिल्लाह। तो अहले मक्का जो है वो इस तरह से जो दुनिया के हालात थे उससे फाल लेते थे और उसका असर लेते हुए मुसलमानों को धमकी देते थे। अब आप देखें कि उस वक्त जबकि रूमी शिकस्त खा चुके थे, शिकस्त पे शिकस्त, ईरान फतह हासिल कर रहा था, और कुरान का ये पेशीन गोई देना, कुरान का ये खबर देना कि जल्दी ही रूमी जो है वो ईरानियों पर गालिब आ जाएंगे, तो ये क्या था? ये अजीम बशीन गोई दरअसल जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दलील थी। ऐसे नहीं अल्लाह ताला ने इस बात को कहा, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की दलील के तौर पर ये बात कही। आप फिर इस आयत को सुनिए कि गुलिबत रूम, रूमी शिकस्त खा गए, गुलिबत मغلوب हो गए, इन्होंने शिकस्त खा ली है, अरूम रूमियों ने, ईसाइयों ने, कहां पे? फी अदनल अर्दी, करीब की सरजमीन में, शाम और फिलिस्तीन के इलाके में रूमी जो हैं इन्हें शिकस्त हुई है, ईरानी जो है वो जीत गए हैं। वहुम मिन बाद गलबहिम सयगलिबून, और अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहे हैं कि अपनी इस शिकस्त खाने के बाद, अपनी इस मगलूबियत के बाद चंद साल के अंदर फिर वो गालिब आ जाएंगे। फी बिदे सनीना, फी बिदे सनीना चंद सालों में, बिदे जो है ये चंद के लिए आता है, 3 से लेकर 9 या 10 तक, 10 से 10 तक ये साल इससे मुराद है। लिल्लाहि अमरु, अल्लाह ही का इख्तियार है, ये अल्लाह का हुक्म है कि रूमी जो है वो चंद साल के अंदर ईरानियों पर गलबा हासिल करेंगे, तो ये अल्लाह ही का अख्तियार है। मिन कबलू, पहले भी, यानी जब रूमियों को शिकस्त हुई थी तब भी अल्लाह ही का ये हुक्म था, मिन बाद, और अब जब दोबारा जो है ये ईरानी शिकस्त खाएंगे और रूमी जीतेंगे तो भी अल्लाह ताला ही का जो है वो इख्तियार होगा, कि ये अल्लाह ही है जिसे चाहता है उठाता है, जिसे चाहता है गिराता है। असल हुकूमत, असल बादशाही जो है, असल इक्तदार जो है वो अल्लाह के पास है। और वो दिन होगा जबकि अल्लाह की बख्शी हुई फतह पर मुसलमान खुशियां मनाएंगे। तो मुसलमान उस वक्त क्यों खुशियां मनाएंगे? दरअसल सहाबाए कराम कहते हैं कि ईरानियों पर रूमियों की फतह और गजवाए बदर में मुशरिकीन पर मुसलमानों की फतह का जमाना एक ही था, इसलिए मुसलमानों को दो खुशियां मिली। पहली खुशी क्या थी? कि ईसाई जीत गए और आग परस्त जो थे वो हार गए, रूमी जीत गए, ईरान वाले हार गए। तो चूंकि ईसाई अहले किताब में से थे तो इसलिए मुसलमान जो थे वो इससे खुश हुए, دوسری خوشی کیا تھی کہ غزوہ بدر ہوئی اور اس میں مسلمان جو تھے وہ جیت گئے اور مکہ کے مشرک جو تھے وہ ہار گئے. تو جب رومی جیتے تھے غزوہ بدر کے زمانے میں تو انہوں نے جو ہے وہ ایران کا سب سے بڑا جو آتش کدہ تھا اس کو مسمار کر دیا تھا, اس کو ختم کر دیا تھا. تو آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک روم اور ایران کی جنگ اور اس کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. اور خاص طور پر یہاں پر جو یہ بات ہے کہ چند سالوں میں رومی جو ہے وہ جیت جائیں گے, اس سلسلے میں ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کہ مسلمان چند سالوں میں جیت جائیں گے تو اہل مکہ نے مسلمانوں کا بڑا مذاق اڑایا, اور یہ بات کہ چند سالوں میں رومی جیت جائیں گے, کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ نازل ہو گئی نا کہ چند سالوں میں رومی جیت جائیں گے, وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِم سَيَغْلِبُونَ, یعنی مستقبل قریب میں, سا یہاں پہ مستقبل قریب کے لیے آیا ہے, فی بھی دیس نہیں, چند سالوں میں. تو اب قریش نے اس خوشخبری کا بڑا مذاق اڑایا. عبی بن خلف, اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شرط لگائی کہ اگر 3 سال میں رومی غالب آ گئے تو وہ 10 اونٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے گا, ورنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ 10 اونٹ اسے دینے ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے شرط لگا لی. اس کے بعد آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے عبی بن خلف سے جو ہے وہ شرط لگائی ہے کہ 3 سال کے اندر جو ہے وہ رومی جیت جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس شرط کا پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ فی بد سنین کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں, اور باد واد عین کا جو اطلاق ہے 10 سے کم پر ہوتا ہے, تو اے ابو بکر تم 3 سال کی بجائے جو ہے وہ جو شرط کی مدت ہے وہ 10 سال کر دو, اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کر دو. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتنا یقین تھا کہ جو قرآن میں ہے یہ سچ ہوگا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر عبی بن خلف سے بات کی جا کر اور کہا کہ مدت بھی بڑھاؤ اور اونٹ بھی بڑھا لیتے ہیں اور نئے سرے سے ہم شرط جو ہے وہ طے کرتے ہیں. وہ راضی ہو گیا. اب 10 سال کے اندر فریقین میں سے یہ بات طے ہوئی کہ فریقین میں سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی 10 سال کے اندر وہ 100 اونٹ دے گا. اور اس وقت کے حالات کیا تھے کہ دور دور تک کہیں ایسے حالات نظر نہیں آتے تھے کہ رومی جو اتنی جو ہے وہ شکست خوردہ قوم ہے کہ یہ جو ہے وہ جیت بھی سکتی ہے. تو یہاں پر جو ہے اسی بات کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں, اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے, یہ اللہ ہی کا اختیار ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد جو ہے رومی جو ہے وہ جیت جائیں گے, اور وہ دن ہوگا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. تو مسلمانوں کو 2 خوشیاں ملے گی, ایک رومیوں کے جیتنے کی اور ایک جو ہے وہ خود مسلمانوں کے جیتنے کی. فرمایا بنصر اللہ, بنصر اللہ اللہ کی مدد سے, یعنی یہ فتح کیسے ملے گی, کیوں ملے گی, اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم, اللہ ہی نصرت دیتا ہے, اللہ ہی مدد کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور وہ زبردست اور رحیم ہے. وعد اللہ, اللہ کا وعدہ ہے یہ. لا يخلف اللہ وعدہ, اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ خبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو وحی کے ذریعے آپ کو پتا چلی تھی نا. آپ کو کیسے پتا چلی کہ کچھ عرصے میں رومی جیت جائیں گے, مسلمان بھی خوش ہوں گے, مسلمانوں پہ بھی اچھے دن آئیں گے؟ یہ مکی صورت ہے اور غزوہ بدر تو مدینہ میں جا کر ہوئی تھی. تو دراصل قرآن کی یہ عظیم پیشین گوئی جو ہے کہ فتح روم ہوگی اور مسلمان بھی خوش ہوں گے, رومی بھی خوش ہوں گے, یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے. اور جو حکومت اللہ کی ہے اس کے معنی کیا ہے کہ قوموں کی زندگی میں اتنے بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں, ایسے نہیں آ جاتے, ایسے نہیں کہ محض اتفاق زمانہ ہو, بلکہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں, اور اللہ کا حکم جو ہے وہ حق اور عدل پر مبنی ہوتا ہے. اگر کوئی قوم اپنے اندر خرابیاں پیدا کر لے, خواہ وہ اہل کتاب میں سے کیوں نہ ہو, جیسے کہ عیسائی, پھر اللہ تعالیٰ اس کو فتح نہیں دیتا. کیوں؟ کسی قوم کے پاس اچھے عقائد کا ہونا, اچھے عقائد اور اچھے اصولوں کا ہونا اس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. یہ آپ بات یاد رکھیں, جیسے کہ آج مسلمانوں کا حال ہے اور مسلمانوں کے پاس قرآن ہے, اور قرآن جو ہے, قرآن کا جو پیغام ہے, اس کے جو اصول ہیں, اس کے جو عقائد ہیں, یہ اجتماعی زندگی میں دیکھیں تو بڑی اہمیت رکھتے ہیں, لیکن اجتماعی زندگی کے بنانے اور بگاڑنے میں یہ اصل کردار ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس قوم کا اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو. تو اصل چیز کیا ہے؟ قوموں کا کردار ہے. اصول موجود تو ہوں اور ان پر عمل نہ کیا جائے تو وہ اصول محض کھوکھلے رہ جاتے ہیں, ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا, محض رسمیں رہ جاتے ہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ قوموں کا انفرادی اور اجتماعی کردار ہے, جو ان کے عقائد اور ان کے جو اصول ہیں اس کے مطابق وہ ڈھلنا چاہیے. تو یہ ہے. تو عیسائیوں نے کیوں شکست پائی, کیوں شکست کھائی؟ اس لیے کہ ان کا انفرادی اور اجتماعی کردار کھوکھلا ہو چکا تھا, اور آگ پرست قوم جو تھی وہ غالب ہوگی اور یہ مفتوح ہو گئے. اور کچھ عرصے بعد جب ان کا انفرادی اور اجتماعی اخلاق اچھا ہو جائے گا تو یہ فتح پائیں گے اور ایرانی جو ہے وہ ہار جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ دن ایسے ہوں گے کہ جب مسلمان بھی جو ہے اپنے اصولوں کے مطابق, اپنے جو عقائد ہیں اس کے مطابق ایک اچھی زندہ قوم بن چکی ہوگی تو انہیں بھی جو ہے وہ فتح ملے گی. تو دراصل ان آیات میں رومیوں کی فتح کی خوشخبری سنائی گئی ہے, اور ساتھ ہی یہ تاکید کی گئی ہے, وعد اللہ, یہاں پہ وعد کا لفظ جو ہے یہ مصدر ہے, تاکید کے لیے آیا ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, لا یخلف اللہ وعدہ, اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ تو وعدوں کو پورا کرتا ہے, کیونکہ اہل ایمان کی مدد کا وعدہ اللہ کا قطعی اور اٹل وعدہ ہے, لیکن جو ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں, ظاہری حالات اور اسباب پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں, یعنی باطن کو نہیں دیکھتے, وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے. تو یہاں پر اللہ کا جو وعدہ ہے اس سے مراد ہے رومیوں کے, جیسے پیچھے جو ہے رومیوں کا ذکر کیا, اور یہاں جو ہے وہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے غلبے کا وعدہ ہے. کیونکہ یہ جو کہا نا وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, کہ اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو جب رومی ہارے اور ایرانی جیتے تو مکہ کے کافر بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم بھی جیت جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, پیغمبر اور مسلمانوں کا غلبہ اس کا وعدہ ہے, نہایت تاکید کے ساتھ, نہایت زور کے ساتھ. اور آپ مزید آگے بھی آیت نمبر 47-60 مزید آپ اس کی وضاحت پڑھیں گے, لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں. آیت نمبر 7 سورۃ الروم، یعلمون، وہ علم رکھتے ہیں، ظاہری پہلو کو دیکھتے ہیں، من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، تو لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، وہم عن الآخرتی ہم غافلون، اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 7 ہے اس میں جو ہے وہ دلیل دی گئی ہے، جیسے دنیا داری کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے لوگ بڑے کامیاب نظر آ رہے ہوتے ہیں، بے شک وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، بے شک وہ آخرت کی تیاری بھی نہیں کر رہے، تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ خوب دولت ہے، کرسی ہے، اقتدار ہے، تو یہ بڑے کامیاب ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے کہ لوگ دنیا کے ظاہری حالات دیکھتے ہیں، اس کو باطن کی نگاہ سے نہیں پہچانتے۔ تو دنیا کی زندگی کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، دنیا تو ایک کھیل تماشا ہے، اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ جو اوپر کی بھی آیات ہیں اور یہ جو واقعہ ہے، یہ آخرت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ انسان اگر اپنے وجود پر بھی غور کرے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چیزوں کو ایسے ہی نہیں پیدا کیا، بلکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ لینے والا ہے، اللہ رب العزت پکڑنے والا ہے، پوچھنے والا ہے۔ تو یہ جو ہار اور جیت کا واقعہ ہے رومیوں اور ایرانیوں کا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے فیصلے کے مطابق کسی کو اقتدار ملتا ہے، کسی سے اقتدار چھن جاتا ہے، کسی کو اللہ اٹھاتا ہے، کسی کو اللہ گراتا ہے۔ قوموں کا گرنا، قوموں کا اٹھنا، قوموں کا عروج و زوال، بس ایسے ہی دنیا کا ایک عام سا واقعہ لگتا ہے۔ جیسے بھی آپ مصر کو دیکھیں کہ مصر جو ہے کیسے اس کے اندر جو ہے ایک انقلاب آیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ دنیا اس کے اوپر جو ہے وہ دنگ رہ گئی، اور ارد گرد کے اور بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں پر آزادی کی لہر جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، ہر واقعے کے پیچھے اللہ کے فرشتے جو ہے فیصلہ کن کام کر رہے ہوتے ہیں، عام انسانی آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ تو جو ظاہر ہے وہ کیا ہے؟ دنیا ہے، باطن کیا ہے؟ وہ آخرت کی دنیا ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کے بس ظاہر کے اندر کھوئے رہتے ہیں، ظاہر کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، اور اس کے جو باطن ہیں اس سے بے خبر رہتے ہیں، اس سے بھولے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اکثر لوگوں کو دنیا کے معاملات کا خوب علم ہوتا ہے، بڑے اس میں عقل مند ہوتے ہیں، مہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ دنیا کا فائدہ جو ہے یہ عارضی ہے، چند دنوں کا ہے، اور آخرت جو ہے اس کا فائدہ مستقل ہے، پائیدار ہے۔ لیکن افسوس کے لوگ آخرت کے معاملات سے غافل ہیں، دنیا کے معاملات کو پہچانتے ہیں اور آخرت کے معاملے کو یہ بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے جو بات کہی گئی کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون، کہ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے یہ خود ہی غافل ہے۔ تو جس طرح دنیا میں قومیں ہارتی ہیں، جیتی ہیں، تو اسی طرح اللہ کے پاس جب لوگ جائیں گے تو کچھ لوگ ہار جائیں گے اور کچھ لوگ جیت جائیں گے، اور ہار جیت کا معیار کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس، دنیا کے پاس نہیں ہوگا ہار جیت کا معیار۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 8 سے لے کر 19 تک دنیا کے نظام اور تاریخ پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے زبردست انداز پر آخرت کے دلائل دیے ہیں۔ اگر انسان دنیا کے نظام پر غور کرے اور قوموں کی تاریخ سے عبرت حاصل کرے تو انسان خود ہی اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ عبادت اور اطاعت کا اصلی حقدار اللہ ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اور انسان کا بھی فرض ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر دلیل دی ہے اور یہ دلیل ہے توحید کے لیے، آخرت کے لیے اور کائنات کی مقصدیت کے لیے کہ اللہ نے کائنات کو کیوں بنایا، کیا کھیل اور تماشا ہے؟ نہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، دور نہ جائیں بلکہ اپنے نفس پر غور کریں۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ ہمیشہ سوالیہ انداز جو ہے وہ سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے تفکر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا؟ فی انفسہم، اپنے آپ پر، اپنے دلوں پر، اپنے نفسوں پر۔ نفس واحد ہے، انفس جمع ہے۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اللہ نے ما خلق اللہ، جو بھی پیدا کیا اللہ نے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور جو وہ چیزیں جو ان دونوں کے درمیان ہیں، انہیں کیسے پیدا کیا ہے؟ الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ واجل مسمى، اور ایک مقررہ مدت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک مقررہ مدت کے لیے اسے پیدا کیا ہے اور حق پیدا کیا ہے، برحق پیدا کیا ہے۔ فَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس ایک آیت میں تین باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے وجود پر آپ نظر ڈالیں، آپ کا وجود اس بات پر جو ہے وہ دلیل بن جائے گا کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ ایک اور زندگی بھی ہوگی۔ کیوں؟ انسان جو ہے زندہ ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آخرت پر دلالت کرتی ہے بات۔ دوسری چیز، زمین اور جو کچھ اس میں بے شمار چیزیں ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات دیے ہیں۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، نا ایسے تو نہیں کسی کو اختیار دے دیا جاتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ زمین ہے، آسمان ہے، اس کی ساری چیزوں میں، اس میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ پھر تیسری بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات سجائی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب دیا، آزادی دی، چاہے تو ایمان لائے، چاہے تو کفر کرے، چاہے تو نیکی کے راستے پہ چلے، چاہے تو بدی کا راستہ اختیار کرے۔ اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذرائع بھی فراہم کیے ہیں، انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تاکہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کی جا سکے۔ اور یہ سب چیزیں دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برحق، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وَأَجَلِ مُسَمَّى، اور ایک مدت مقررہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نظام کو ختم کر دے گا اور پھر لوگوں سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا، تم نے میرے دیے ہوئے اختیارات کو کیسے استعمال کیا، تم نے اپنی آزادی انتخاب کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا۔ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، وہ دنیا کے اندر کھوئے ہوئے ہیں، وہ دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، وہ دنیا کے اندر مصروف ہے، जैसे बच्चे जब बाहर खेलते हैं तो भूल जाते हैं कि शाम हो गई है तो घर जाना है ना। बिल्कुल इसी तरह इंसान जो है बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखता है, लेकिन भूल जाता है कि मुझे मरना है और अल्लाह से मुलाकात करनी है। और अगर उसे अल्लाह की मुलाकात का खौफ हो तो हो नहीं सकता कि वो तैयारी ना करे। अब आप देखें, आपको कोई भी इनविटेशन कार्ड मिलता है, आप जब वो कार्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप देखते हैं इसकी तारीख क्या है, दिन कौन सा है, टाइमिंग क्या है, ये कैसी दावत है, हम कौन कौन जाएंगे, कैसे जाएंगे, डायरेक्शन निकाल लेते हैं, आप तोहफे का इंतजाम करते हैं, क्योंकि आपको यकीन होता है कि हमने वहां मुलाकात करनी है जाके, और आप उसकी पूरी तैयारी करते हैं। अब आप देखें, हम सबको पता है कि हमें मरना है, हम सबको पता है कि अल्लाह से मुलाकात होगी, लेकिन अल्लाह से मुलाकात जो है उसकी तैयारी नहीं की। एक तो इनकार है कि वैसे ही आखिरत का इनकार कर दिया जाए, और एक ये कि माना तो जाए कि मरना है, माना तो जाए कि अल्लाह के पास जाएंगे, लेकिन फिर अल्लाह के पास जाने की कुछ भी तैयारी ना की जाए। ये बड़ी जो है ना अफसोस की हालत को बयान किया गया है। वह इन्ना कसीर मिनन नासी बिलिक़ाइ लकाफिरून। फिर आप देखिए कि यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तारीख से दलील दी है। पहले दो दलीलें आप पढ़ चुकी हैं, एक इंसान के अपने नफ्स की, दूसरी कायनात से दलील दी है, और तीसरी दलील जो है ये तारीख से है। अवलम यसीरू फिल अर्दी, क्या ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं है, क्या इन्होंने कभी जमीन में सैर नहीं की, चलते नहीं है। फयनजुरू, बस ये मुशाहिदा करते, बस ये देखते, कई फकाना आकिबतुल लजीना मिन कबलहिम, कि क्या अंजाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले गुजरे। ऐन काफ बा जो है अकिब, और ये पौ की एड़ी को भी कहते हैं ना, पौ का पिछला हिस्सा। तो इसी तरह इंसान जो अमल करता है, फिर उसके बाद उसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है, उसको आकिबत कहते हैं, अंजाम कहते हैं। तो वो कौमें जो पहले थी, उनके अमल कैसे थे, उनका किरदार कैसा था, फिर उनका अंजाम कैसा हुआ, क्या ये गौर फिक्र नहीं करते। तो यहां पर अब आप देखें कि मजीद फरमाया वो कैसे थे, कानू अशद्द मिनहुम कुवा। यहां पे इनकी पहली सिफत बताई गई कि वो इनसे ज्यादा ताकत रखते थे। अहले मक्का को कहा जा रहा है कि अहले मक्का, वो कौमें जो गुजरी हैं, वो लोग तुमसे कुवत में ज्यादा मजबूत थे, अशद्दा शदीद थे, बहुत मजबूत थे। ये कौमे आद, कौमे समूद, उन कौमों की तरफ इशारा है। नंबर दो, वह असारुल अर्ज़ा, उन्होंने जमीन को खूब उधेड़ा, उन्होंने जमीन को खूब आबाद किया। असारु, इसका रूट है सावरा, ये गुबार या बादल के ऊपर उठने और फैलने के लिए इस्तेमाल होता है। और जब जमीन में डिगिंग की जाती है, जमीन में गोडी की जाती है, जमीन में हल जोता जाता है, तो उससे भी मट्टी खोबार उठता है ना। सौर बैल को भी कहते हैं। बैल क्या करता है कि बैल को जो है वो हल में जोता जाता है, और फिर उससे जमीन जो है उसको उधेड़ा जाता है। तो वह असारुल अर्दा के मानी क्या, उन्होंने जमीन को जोता, खूब उधेड़ा, खूब उन्होंने जो है वो काश की, खूब जमीन में ज़राअत की, खूब उनके पास तरक्की हुई, खूब उरूज उनको मिला। तो दूसरी उनकी खूबी क्या है कि यहाँ पे उनकी ज़राअत, बागबानी, दौलत, उसकी तरफ इशारा है। क्योंकि असारुल अर्दा का लफ्ज ज़राअत के लिए हल चलाने पर भी होता है, और जमीन खोद कर उसके नीचे पानी निकालना, नहरें खोद बनाना, मादनियात वगैरह, दौलत हासिल करना, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी कौमे आद, कौमे समूद और कौमे मदियन, के वो ऐसे करते थे। नंबर तीन, वह अमरूहा अक्सरा मिम्मा अमरूहा, और उसे इतना आबाद किया था जितना इन्होंने नहीं किया। तो कौमे आद, कौमे समूद और कौमे मदियन ने क्या किया था, वह अमरूहा, जमीन को आबाद किया था। हा कि जमीर जो है ये अल अर्ध जमीन के लिए आई है। अक्सरा, अक्सरा जो है ज्यादा, मिम्मा अमरूहा, जो कुछ आबाद किया इन अहले मक्का ने, इन अरबों ने, तो ये अहले मक्का ने जितना जमीन को आबाद किया है, जितनी इन्होंने मादी तरक्की की है, इससे कहीं बढ़कर उन कौमों ने बड़े वसी पैमाने पर जो है वो अजीमुशान तामीरी काम किए थे, जमीन के जराए को बड़े पैमाने पर उन्होंने जो है वो एक्सप्लोर किया और बड़े पैमाने पर उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन चूंकि उनके पास अकीदा हक नहीं था, उनका इखलाक सवाले नहीं था, वो नेक लोग नहीं थे, उन्होंने रसूलों का इनकार किया, तो उनके तामीरी काम, उनकी जरात में तरक्की, उनकी जिस्म के अंदर जो ताकत थी वो उनको अल्लाह के अजाब से बचा ना सकी। तो क्या इन्होंने देखा नहीं है, फजाअत हुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाती, उनके पास उनके रसूल रोशन निशानियां लेकर आए थे। जैसे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का के पास निशानी लेकर आए थे, कुरान लेकर आए थे, तो उनके पास भी रसूल आए थे। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, फिर क्या हुआ, फिर अल्लाह इन पर जुल्म करने वाला ना था मगर वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। तो कौमों पर तबाही की वजह क्या है, अल्लाह ने तो कोई ज्यादती नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की कि उन्होंने रसूलों का इनकार किया, उन्होंने आसमानी किताबें जो थी उनका इनकार किया। तो यहां तक के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जो है वो नेस्तो नाबूद कर दिया। फरमाया सुम्मा कैना आकिबत अल्लजीना, सुम्मा फिर कैना था आकिबत अंजाम, फिर इन लोगों का अंजाम था अल्लजीना वो जिन्होंने असाउ का मतलब है उन जिन्होंने बुराई की, सीन वो हमजा से ही है इसका रूट, और असुआ इसका रूट भी सीन वो हमजा से है, फिर इन्होंने बुराई की, इन्होंने बुराइयां की, अनकज़बू ये के झुटलाया भी आयात इल्लाही अल्लाह की आयात को, वकानू बिहा यस्ताज़ेऊन और ये इन आयात का मजाक उड़ाया करते थे। तो अब यहां पर जो है पिछली कौमों की तरक्की, तामीर, शानदार तमद्दुन, अजीम शान तामीरी काम, उनका उरूज, उस सब का भी जिक्र है और उसके साथ ही उनके अमल का भी जिक्र है कि रसूलों का इनकार, अल्लाह की आयात को झुठलाना, तो उनका रिजल्ट क्या निकला कि उनके इस जुल्म की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो खत्म कर दिया, बड़ा बुरा अंजाम हुआ उनको, उनको नेस्तो नबूद कर दिया गया। ये है असल बात। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 11, इसमें अब मजीद जो है वो दलाइल हैं तौहीद के, आखिरत के, कि अल्लाहु यब्दाउल खल्का थुम्मा युईदुहु थुम्मा इलैही तुरजाउन, अल्लाह ही खल्क की इब्तदा करता है फिर वही इसका इयादा करेगा। यानी जैसे दुनिया में लोग जीते हैं, जिंदा होते हैं, फिर मर जाते हैं, तो मरकर खत्म नहीं होंगे, अल्लाह इन्हें दोबारा पैदा करेगा, सुम्मा इलैही तुरजाउन, फिर उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। तो ये करता कौन है, ये अल्लाह करता है, तुम्हारे माबूद नहीं करते, ये अल्लाह करता है और अल्लाह ही कर सकता है। वयौमा तकूमु सआतु, और जब वो कयामत की घड़ी कायम होगी, भरपा होगी, युबलिसुल मुजरिमून, उस दिन मुजरिम हक दक रह जाएंगे। युबलिसु का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया गया है, बालाम सीन इसका रूट है, इसके मानी है सख्त मायूसी और सदमे की बिना पर किसी शख्स का जो है वो गुमसुम हो जाना, उम्मीद के सारे रास्ते बंद पाकर किसी का हैरान और शशदर रह जाना, कोई हुज्जत ना पाकर, कोई दलील ना पाकर किसी का दम बखुद हो जाना। ये ऐसे ही है जैसे कोई मुजरिम जो है वो ऐन जुर्म करते वक्त जो है वो रेड हैंडेड पकड़ा जाए, भरे हाथों पकड़ा जाए, जैसे रिश्वत या चोरी का सामान उसके पास है और अब फरार की कोई राह नहीं, सफाई के लिए कोई चीज पेश नहीं कर सकता इसलिए कि सब कुछ पास है उसके, कातिल है तो खून के कत्ल के निशान है और जिससे कत्ल किया वो चीज भी उसके पास है, तो अब क्या है कि सफाई नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता, बच नहीं सकता, जबान बंद है, इंतहाई मायूस, दिल शिकस्तगी की हालत में हैरान और परेशान होना। इबलीस का भी यही रूट है, युबलिसु बालामसीन, और इबलीस भी बालामसीन, इंतहाई मायूस। तो कयामत के दिन ये कुफ्र करने वाले, शिर्क करने वाले इंतहाई मायूस होंगे। वलम यकुल लहुम मिन शुरकाइहिम शुफाउ वकानु मिन शुरकाइहिम काफिरीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान कर रहे हैं कि उस दिन वलम यकुल लहुम, और नहीं होगा इनके लिए, मिन शुरकाइहिम, इनके शरीकों में से कोई, यानी दुनिया में जिनको ये पूछते थे, जिनसे उम्मीदें रखते थे, तो इनके ठहराए हुए शरीकों में से कोई नहीं होगा। शुफाऊ शिफात करने वाला, शुफाऊ सिफारशी। तो आमतौर पर जो ये शिर्क करते थे तीन किस्म का होता था, एक तो फरिश्तों, नबियों, औलिया, शहदा, सालहीन को खुदाई सिफात और इख्तियारात देते थे, दूसरा बेशऊर बेजान, चांद, सूरज, सैारे, दरख्त, पत्थर, हैवानात वगैरह, इनके आगे प्रस्तिश करते थे, तीसरा अकाबिर मुजरिमीन, जिन्होंने खुद कोशिश करके झूठ के जाल फैलाकर ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया में अल्लाह के बंदों से अपनी बंदगी कराई, जिसमें शैतान है, नमरूद है, फिरौन है, झूठे मजहबी पेशवा हैं। तो ये सारे जो हैं, कोई उनकी मदद के लिए खड़ा नहीं होगा। बकानू बिशुरका अहम, और वो होंगे अपने शरीकों से काफिरीन, इनकार करने वाले। ये सारी हस्तियां, ये सारे लोग जो हैं, और ये चीजें जो हैं, ये शिर्क करने वालों का इनकार करेंगी कि हमें तो कोई खबर नहीं, हमने नहीं कहा था। यौम तकुमुस्सातु यौम यतफर्रकून, जिस दिन वो घड़ी भरपा होगी, जिस दिन वो कयामत कायम होगी, उस दिन यतफर्रकून, लोगों को अलग अलग ग्रोहों में बांट दिया जाएगा। यतफर्रकून, यतफर्रकून का मतलब है अलग अलग हो जाएंगे। तो उस दिन वो अलग अलग हो जाएंगे, माने क्या है, जैसे दुनिया में जो है वो कौम, नस्ल, वतन, जबान, मुख्तलिफ ग्रोह बन दिया है, तो वहां पे जो है ये सारी ग्रोह बंदियां खत्म हो जाएंगी, और वहां पे एक किस्म के नजरियात रखने वाले, उनकी एक ग्रोह बंदी होगी, जैसे कातिल अलग और डाकू अलग, शिर्क करने वाले अलग। तो जितने भी काफिर और कुफ्र करने वाले हैं, और उसके अंदर बहुत सी कैटेगरी पैदा हो जाएंगी, और इसी तरह जितने ईमान लाने वाले हैं, असल अकीदा और इखलाक रखने वाले हैं, उनके तहत उनकी अलग जो है वो गुरुबंदी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका जिक्र किया जा रहा है, यौम यतफर्रकून, उस दिन वो ग्रोहों में सारे इंसान अलग अलग ग्रोहों में बढ़ जाएंगे। अब मजीद जो बड़े दो ग्रोह हैं उनका जिक्र किया जा रहा है। पहला ग्रोह कौन है, ईमान लाने वाले और अमले सवाले करने वाले। فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, बस रहे वो लोग जो ईमान लाए और अमले सवाले किए, فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ, वो एक बाग में शादा और फरहा रखे जाएंगे। रौदा, यहाँ पे रौदा का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया गया है, और ये कहते हैं बाग को, रा वो द्वाद इसका रूट है, और ये बाग को कहते हैं, बाग की क्यारी को कहते हैं, बाग का वो हिस्सा जो बहुत ही जो है वो जरखेज हो, सरसब्ज हो, वो जगह जहां पानी जमा हो और उसकी वजह से खूब वो जगह सरसब्ज हो, तो पूरे बाग में से वो जगह, वो क्यारी जो जिसमें कसरत से फूल हो, फल हो, और बहुत ही अच्छी जो खेती है, जैसे रौदतुल जन्ना, आपको पता है ना, रौदा तुम मिन रियादिल जन्ना, तो जन्नत के बागों में से एक बाग, वो जो मस्जिद नबी में एक जगह है जहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौदा है, उसके पास ही, तो उसके बारे में हमें हदीस मिलती है कि वो जो है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है, और वहां पे नमाज पढ़ने का बहुत ही अजर है। तो अब रौदा जो है इसके मानी है कि एक बाग। बाग का मानी क्या है कि बहुत ही कीमती चीज ईमान और अमले सवाले करने वालों को मिलेगी। यो बारून हा बारा इसका रूट है। इसके मानी होते हैं ऐसे निशान जो उम्दा और खूबसूरत मालूम हो। स्याही के लिए भी हिब्र का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे कपड़े जो बहुत मुलायम और नए कपड़े हों, और उनके लिए भी आता है कि सौबुन हिब्रुन। तो जैसे नक्शो निगार वाले कपड़े बड़े खूबसूरत लगते हैं ना, तो उसको देखकर इंसान खुश होता है। तो यो बारून के मानी है मुसर्रत, लज्जत, शानो शौकत, तकरीम। तो वहां पे ये लोग बड़ी इज्जत के साथ रखे जाएंगे, बड़े खुशो खुर्रम होंगे, हर तरह की लज्जतें उनको मयसर होंगी। फिर रौदती युहबरून, तो ईमान के साथ जो अमले स्वाले का जिक्र किया गया, तो मानी क्या है कि ईमान भी लाए और फिर अमले स्वाले करते रहे। तो याद रखे कि असल चीज जो है ना, जिस चीज पर यकीन रखते हैं फिर उसके मुताबिक अमल करना है, अपने किरदार को बदलना है, तो उन्हें जो है वो जन्नत में शादा और फरहा रखा जाएगा। अब दूसरा ग्रुप है वह अमल लजीना कफरू, रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वह कज्जबू भी आयातिना और हमारी आयात को झुठलाया, वलिका इल आखिरती और आखिरत की मुलाकात को झुठलाया, फाउला इकफिल अजाबी मुहदरून, वो अजाब में हाजिर रखे जाएंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे खास तौर पर मुहदरून का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया गया है, और मुहदरून जो है इसके मानी क्या है। मुहदरून के मानी है कि वो लोग जो हैं वो अजाब में हाजिर रखे जाएंगे। ये दरअसल उनकी बेबसी और जिल्लत की तस्वीर है, रुसवाई की तस्वीर है, कि अजाब में इस तरह बांधकर और घसीट कर लाए जाएंगे जिस तरह सजा याफ्ता कैदी लाए जाते हैं। भाग नहीं सकते, जा नहीं सकते, पकड़ कर उनको वहां पे जो है वो अजाब के अंदर धकेल दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, या अल्लाह तो हमें उन लोगों में, बदकिस्मत लोगों में शामिल ना करना। आप जरूर इस बात पर सोचा करें कहीं मैं अल्लाह के अहकाम का इनकार करने वालों में से तो नहीं हूँ, कहीं मैं अल्लाह की आयात जो है इनको छोड़ने वालों में से तो नहीं हूँ। जरूर अपना मुहासबा करना चाहिए और जरूर अपना जायजा लेना चाहिए। फिर आप देखिए कि आयत नंबर 17 से लेकर 19 तक, 17 से 19 तक इन आयात की जो है बड़ी अहमियत और फजीलत है। अबू दाऊद और तिबरानी की रवायत है, अबू दाऊद और तिबरानी की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो आयतों के मुतल्लिक, इन तीन आयतों के मुतल्लिक, 17 से लेकर 19 के मुतल्लिक ये फरमाया कि जिस शख्स ने सुबह को ये कलमात पढ़ लिए तो दिन भर में इसके अमल में जो कोताही होगी वो इन कलमात की बरकत से पूरी कर दी जाएगी, और जिसने शाम के वक्त ये कलमात पढ़ लिए तो इसके रात के अमाल की कमी इसके जरिए से पूरी कर दी जाएगी। और हजरत मुआज बिन अंस रजी अल्लाह अनु से रवायत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो तारीफ की जाती है ना कि वो अपने अहद को वफा करने वाले थे, तो कहते हैं कि उसकी वजह ये दुआ थी, वह इब्राहिम अल्लजी वफा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कलिमात सुबह शाम पढ़ा करते थे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत थी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में बहुत ही अच्छी खुशखबरी दी। आइए इन जो आयात है इनको समझते हैं, और अगर आप गौर करेंगी तो आप देखेंगी कि इन आयात में दरअसल अल्लाह की हमदो सना बयान की गई है, अल्लाह की तारीफ बयान की गई है। फसुबहान अल्लाही, तस्बीह करो अल्लाह की। सुबहान अल्लाही के मानी क्या है कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो। ही ना तुम सूना जब तुम शाम करते हो। तुम सूना जो है इसका रूट है मीम सीन वो और शाम का वक्त जैसे मगरिब और इशा का वक्त, कि जब के तुम शाम करते हो, वही ना तुस्बिहून और जबकि तुम सुबह करते हो। वलाउल हम्दु फिस समावाती वल अर्दी, और उसी के लिए हम्द है, तारीफ है आसमानों में, वल अर्दी और जमीन में, आसमानों और जमीन में अल्लाह के लिए हम्द है। वह अशियन आइन शीन वाव रूट है, और तीसरे पहर, अशियन जो है इसका तर्जुमा असर का वक्त भी किया जाता है, जैसे पिछला पहर, बाद दोपहर, पिछला पहर। और तस्बीह करो, वह अशियन तीसरे पहर, वहीना तुजहरून और जबकि तुम पर जोहर का वक्त आता है। तो यहाँ पे जोहर का वक्त क्या है, जब जवाल का वक्त जो है वो हो जाता है, और मगरिब से लेकर इशा का वक्त भी मुराद लिया जाता है वही ना तो सेरून से। ये जो आयत नंबर 17 और 18 है, मुफस्सरीन कहते हैं कि एक तरफ इसमें अल्लाह की तस्बीह बयान करने के लिए कहा जा रहा है कि जबान से अल्लाह की पाकी बयान की जाए, और एक तो ये है ना, इंसान हर वक्त ही दायमन अल्लाह को याद करे, और दूसरा क्या है कि खास तौर पर इन औकात में। तो एक इससे इसके मानी क्या है कि अल्लाह की जिक्र करना, अल्लाह की तस्बीह बयान करना। दूसरी राय यह है कि यहां तस्बीह करने से मुराद नमाज पढ़ना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अनहो से किसी ने पूछा कि क्या कुरान में 5 नमाजों का जिक्र है, तो आपने फरमाया कि हाँ। फिर ये आयत जो पेश करके कहा कि ही ना तुम सूना से मुराद नमाज मगरिब, ही ना तुस्बिहूना से मुराद नमाज फजर, और अशियन में नमाज असर, और ही ना तुजहरून में नमाज जोहर का जिक्र है। फिर सिर्फ एक नमाज इशा रह गई, तो इसके सबूत में उन्होंने एक और आयत को पढ़ा कि मिन बाद सलातिल इशा। और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हीना तुम सूना में नमाज मगरिब और इशा दोनों शामिल हो जाती हैं। तो इस आयत, इन आयात के बारे में दो राय हैं, एक तो ये कि अल्लाह की हमदो सना और तस्बीह बयान करना, और दूसरा ये कि नमाज पढ़ना। इससे क्या बात पता चलती है कि इंसानों की रहनुमाई करना है कि ये जो औकात है, जब आप देखें सुबह शाम दोपहर तीसरा पहर, ये औकात है कि इन औकात में होता क्या है, एक के बाद दूसरा वक्त आ जाता है, ये अल्लाह की कमाल कुदरत और अजमत पर दलालत करता है। तो लोगों, इन औकात में अल्लाह की तस्बीह और तहमीद किया करो, और सुबह शाम के अज़कार में ये आयात हमें मिलती हैं, और इसकी बड़ी फजीलत जो है वो बयान की जाती है, और आप भी सुबह शाम के अज़कार में इन आयात को शामिल कर सकते हैं। युखरजुल हय्या मिनल मय्यिती, वो जिंदा में से मुर्दे को निकालता है, जैसे बीज है तो उससे पौधा, नुतफा है तो उससे इंसान, अंडा है तो उससे बच्चा, मुर्गी, चूजा वगैरह। तो वो जिंदा में से जो है वो मुर्दे को निकालता है। युखरजुल मय्यिता मिनल हय्य, और मुर्दे में से जिंदा को निकालता है। युहयिल अर्द बाद मौतिहा, और जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है। वकजाली का तुखरजून, और इसी तरह तुम लोग भी हालत मौत से निकाल लिए जाओगे। तो अब आप देख लें कि जिंदा में से मुर्दा, मुर्दा में से जिंदा, इसके लिए मैंने अभी मिसाल दी बीज की, नुतफे की, अंडे की, कि अंडे से मुर्गी का बच्चा और बच्चे से फिर दोबारा मुर्गी का बनना और अंडा उसका देना, और फिर दोबारा ये सिलसिला चलता है। इसी तरह नुतफा इंसान का, फिर इसी तरह बीज है तो दरख्त बनते हैं, फिर और उसमें बीज पैदा होते हैं। तो ये जो जिंदगी और मौत है, ये जिंदा में से मुर्दा और मुर्दे में से जिंदा निकालना, ये इख्तियार अल्लाह के पास है। इसी तरह जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी देना, कि खुश्क जमीन है, बारिश के कतरे जब उस पर आते हैं तो जिंदा हो जाती है, सरसब्ज हरियाली, फिर जर्दी, फिर वो हवा उसको उड़ाती है, और फिर क्या है कि फिर खिजा आ जाती है। तो बहार है फिर खिजा है, तो इसी तरह जिंदगी है फिर मौत है। वकजालिक तुखरजून, वो इसी तरह तुम लोग भी हालते मौत से निकाल लिए जाओगे। तो यहाँ पे मौत और हयात की जो हकीकत बताई गई है, इसमें ये बात बताई गई है कि असल जो जिंदगी है वो ईमान की जिंदगी है, असल जो जिंदगी है वो अल्लाह के पास जो है वो जाने के वक्त की जिंदगी होगी। तो क्या करना चाहिए, ये आयात हमें ये पैगाम देती हैं कि दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि वकजालिक तुखरजून जो है, इखराज के मानी होते हैं किसी चीज से किसी चीज को निकालना, किसी चीज को जाहिर करना। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मरने के बाद दोबारा निकाले जाओगे, जिंदा किए जाओगे, दुनिया के गोशे गोशे से तुम उठकर खड़े हो जाओगे और हिसाब किताब तुम्हें देना होगा। तो ये जो आयत है दरअसल अल्लाह की कुदरत को जाहिर करती है कि अल्लाह के लिए किसी को जिंदा करना, किसी को मारना कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो दुनिया में ये जो है, ये दरअसल ये एक रिहर्सल है, और ये किस लिए है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाओगे कयामत के दिन, और फिर उस दिन तुमसे जो है वो हिसाब किताब लिया जाएगा। तो ये थी हमारी सूरत रूम की आयात जो हमें पैगाम देती हैं कि दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी की जाए, और जो दुनिया की फतह और शिकस्त है ये जाहिरी है, इसके बातिन में जो असल में फतह है, जो कामयाबी है, वो आखिरत की है। तो इसका ख्याल रखते हुए, उसको देखते हुए दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी की जाए। जैसे कयामत के दिन इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, एक अल्लाह की हमद व सना करने वाले, ईमान और अमले सवाले रखने वाले, और दूसरे कुफर करने वाले, अल्लाह की आयात का इनकार करने वाले। तो क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरा शुमार जो है वो किन लोगों में होगा, फिर मेरे साथ क्या बनेगी, फिर क्या गुजरेगी। तो आयत नंबर 1 से लेकर 19 तक लोगों को जिक्र और फिक्र की दावत दी गई है, क्योंकि जब इंसान सोचता है, गौर व फिक्र करता है, तो फिर अल्लाह को पाता है। कायनात के अंदर अल्लाह ने दलाइल बखेर दिए हैं, इंसान की जात में, बाहर की कायनात में, पैगंबर की तालीमात में। तो जो लोग इन खुदाई निशानों पर गौर करेंगे वो अल्लाह ताला को पा लेंगे। तो यही है जो असल पैगाम है जो यहां पर दिया गया है, कोई आखरत को माने या ना माने, आखरत आकर रहेगी। तो हमारा भला और फायदा इसी में है कि हम फिर अल्लाह के पास जाने की तैयारी करें। वह कजा निका तो खरजून, इसी तरह तुम लोग भी हालत मौत से निकाल लिए जाओगे। तो आप सोचिए, गौर कीजिए, ये एक दस्तक है, ये एक पैगाम है, ये एक पुकार है, ये एक आवाजा है। मसलसल कुरान के अंदर के लोगों, तुम्हें मेरे सामने हाजिर होना होगा और फिर अमाल की जवाबदेही करनी होगी। तो आप भी सोचिए कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं क्या करती हूँ, और क्या बनेगी जब मैं अल्लाह के पास जाऊंगी। और लोगों की गफलत की बड़ी वजह ही दरअसल जो है वो आखरत का इनकार है। अगर पता हो कि मरना है, अल्लाह के पास हाजिर होना है, फिर हिसाब किताब होगा, तो हो नहीं सकता कि इंसान जो है वो अल्लाह का मुनकिर बन जाए। तो ये है सूरत रूम की आयत नंबर 1 से लेकर 19 तक की आयात, और जिसमें हमें ये बात पता चलती है कि हमें अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए। और मैं आखिर में आपको ये भी बताती चलूं कि जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने वो जो उबई बिन खल्फ से शर्त लगाई थी। अब क्या हुआ कि जो रूमी थे वो जीत गए, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को शर्त के मुताबिक 100 ऊंट भी मिल गए। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि आप इन ऊंटों को ले तो लें, उबै बिन खल्फ से ले तो लें, लेकिन आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों मना किया था? क्यों? जब शर्त लगाई गई थी तो उस वक्त जुआ हराम नहीं हुआ था, और जब ये वक्त आया शर्त के पूरा होने का तो जुआ हराम हो चुका था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काफिरों से शर्त का माल तो ले लिया जाए, मगर साथ ही हदायत की कि इसे खुद इस्तेमाल करने की बजाय जो है वो सदका कर दिया जाए। अब आप देख रहे हैं कि 100 ऊंट मिले हैं और कितनी बड़ी बात है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उसका इस्तेमाल नहीं किया था। और जब ये रूमी जीते थे और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी अपनी शर्त को जीत गए, अरब के बकसरत मुशरिकीन ईमान ले आए थे उस वक्त, कई लोग ईमान लाए थे, क्योंकि जो उबई बिन खल फौत हो चुका था लेकिन उनके वारसों ने जो है वो शर्त के ऊंट अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के हवाले किए थे। तो असल बात क्या पता चलती है कि जो मोमिन है वो अल्लाह का मुती होता है, अतात गुजार होता है। तो जो जो अहकाम आते चले गए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर एक इनकलाब पैदा होता चला गया। तो यही है पैगाम मेरे और आपके नाम भी कि अब तक की जिंदगी में जो भी गलतियां और कोताहियां हुई हैं उन पर तौबा इस्तगफार करना चाहिए, और अब अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो ढालना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन मुसलमान बनाए, हम सबसे राजी हो जाए। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।